Ocean Team. Grupo número 2. सदैव अपने को दिलाराम बाप की दिल में रहने वाले अनुभव करते हो। दिलाराम की दिल तख्त है ना, तो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसे अपने को समझते हो। सदा तख्त पर रहते हो या कभी उतरते कभी चढ़ते हो। अगर किसको तख्त मिल जाए तो तख्त कोई छोड़ेगा। यह तो श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बनने का भाग्य मिला है। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो हम आत्माएं भगवान के दिल तख्त नशीन आत्माएं, भगवान के हृदय सिंहासन पर विराजमान आत्माएं हैं। ऐसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो? तो सदैव तख्त नशीन आत्मा इस स्मृति में रहो, जो दिल में समाया हुआ रहेगा। परमात्मा दिल में समाए हुए को और कोई हिला सकता है? भक्ति में परमात्मा को हृदयेश्वर कहते हैं, हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। भक्तों के हृदय में रहता है, भक्तों के हृदय में विहार करता है, रंजन करता है। और यहाँ
बच्चों के
हमारे हृदय में तो वो है ही, हम उसके हृदय में विराजमान है, उसके दिल तख्त नशीन है, उसके हृदय सिंहासन पर हम विराजमान है। यहाँ मामला थोड़ा बढ़ गया है। वहां पर हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी ऐसे गीत है, यहाँ हम उसके हृदय सिंहासन पर विराजमान है, हृदय सम्राट। दिल तख्त नशीन आत्माएं सदा सेफ है, माया के तूफान से भी, प्रकृति से के तूफान से भी, दोनों तूफानों से सेफ। कोई माया वहां तक पहुंच सकती है? भगवान के हृदय तक, भगवान के दिल तक कोई प्रकृति की हलचल नहीं, न माया की हलचल हिला सकती है और न प्रकृति की हलचल हिला सकती है, कोई हलचल वहां नहीं। ऐसे अचल हो या कभी अचल कभी हिलते हो, यादगार क्या है? अचल घर, चंचल घर तो बना ही नहीं है, हलचल घर तो बना ही नहीं है, चंचल घर तो बना ही नहीं है। अनेक बार अचल बने हो, अभी भी अचल हो ना, हलचल में नुकसान होता है और अचल में फायदा। कोई चीज हिलती रहे तो टूट जाएगी ना। तो हम दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, भगवान के हृदय सिंहासन पर विराजमान आत्माएं हैं। तो जो दिल तख्त पर है वो कभी चढ़ते नहीं कभी उतरते नहीं, जो दिल तख्त पर है वो सदा सेफ है, जो दिल तख्त पर है वो कभी हलचल में नहीं आते, सदा अचल, चढ़ना उतरना नहीं, और जो हिलता नहीं वो सदा उसमें फायदा है, हलचल में नुकसान है, टूटना, टूटने की संभावना है जो चीज ज्यादा हिलती है उसमें। सदा यह याद रखो कि हम दिलाराम के दिल तख्त नशीन है। यह स्मृति तिलक है, तिलक है तो तख्त नशीन भी है, इसलिए जब तख्त पर बैठते हैं तो पहले राज तिलक देते हैं, राज अभिषेक करते हैं तो तिलक देते हैं, तख्त देते हैं, तिलक लगाते हैं, ताज पहनाते हैं। कौन सा ताज? विश्व कल्याण, विश्व सेवा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, और डबल पवित्रता का ताज, डबल ताजधारी हो तुम, संगम परी डबल ताजधारी। तो यह स्मृति का तिलक ही राज्य तिलक है, तिलक भी लगा हुआ है, तो तिलक लगा हुआ भी है या मिट भी जाता है कभी कभी? तिलक कभी आधा रह जाता है या कभी मिट भी जाता है, ऐसे तो नहीं है। यह अविनाशी तिलक है, स्थूल तिलक नहीं। यह तिलक अविनाशी है, कभी मिट नहीं सकता। जो तख्त नशीन होता है उसको कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है। आजकल के नेताओं को तख्त नहीं मिलता, क्या मिलता है? कुर्सी। अस्थिरता है उस कुर्सी में, सत्ता और सियासत की जो कुर्सी है उसमें अस्थिरता है, डर है, खतरा है, सदा नहीं रह सकती वो। कांटों की सही है, कांटों की कुर्सी है। तो आजकल के नेताओं को तख्त नहीं मिलता, कुर्सी मिलती है, तो भी कितना नशा, क्या नशा रहता है उनको? हमारी पार्टी का राज्य है। वो तो है कुर्सी और आपका है तख्त, सिंहासन। तो स्मृति नशा दिलाती है, अगर स्मृति नहीं तो नशा भी नहीं। तिलक है तो तख्त है, तो चेक करो कि स्मृति का तिलक सदा लगा हुआ है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। तो बाबा ने कहा कि सदा तुम दिल तख्त नशीना तुम आए हो, चढ़ने और उतरने वाले नहीं हो, हलचल वाले नहीं हो। जो दिल तख्त में है वो सदा सेफ है, और उनका है इनकी कुर्सी, उसका उनको नशा है। तो इसका तिलक कभी मिट नहीं सकता, यह अविनाशी तिलक है, इसकी स्मृति में रहो। अभी आगे दिल्ली वाले से बाबा बात कर रहे, दिल्ली वाले क्या कर रहे हो, राजधानी की क्या तैयारी कर रहे हो? राजधानी के लिए कितनी तैयारी चाहिए? प्रकृति भी तैयार चाहिए, राज्य करने वाले भी तैयार चाहिए। तो क्या तैयारी की है? आदि दिल्ली को तैयार किया है 92। दिल्ली की संख्या कितनी है? 85 लाख। और ब्राह्मण कितने तैयार हुए हैं? 5,000। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। तैयार कब करेंगे? जब विनाश का घंटा बजेगा तब। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो दिल्ली वालों को तैयार करो पहले। पहले आदि की संख्या भी 9 लाख तो है ही, वो भी तैयार नहीं किए, अभी तो 1,000 में ही है। तो क्या करना पड़ेगा? बनी बनी राजधानी में आएंगे या तैयार भी करेंगे? जो करेगा सब आएगा, ऐसे नहीं समझना चलो राजधानी तैयार होगी आ जाएंगे, नहीं। यह नियम है, जो करता है वो आता है, तो करना पड़ेगा ना। यह तो बहुत स्लो गति है, तीव्र गति कब होगी? किसी ने कहा 5 साल में। तो बाबा क्या कहते हैं? मंजू बहन क्या कहते हैं बाबा? बाबू ने पूछा तीव्र गति कब होगी, तो किसी ने कहा 5 साल में होगी। बाबा ने कहा 5 साल में विनाश हो जाए तो? तैयारी ना हो और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे बाबा? किसी ने कहा आबादी बढ़ती जाती है। मैंने कहा यह तो खुशखबरी है, आपकी सेवा में भी वृद्धि होती जाती है, सेवाधारियों को सेवा का चांस मिल रहा है। तो दिल्ली वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, अभी बहुत रहा हुआ है, अभी फास्ट गति करो। 1 को 10 बनाने हैं,
उस टाइम में यही चाहिए।
12 मास में 10 तो बना सकते हो, यह तो सहज है। आप लोगों ने हाँ कहा तो फोटो निकल रहा है, ऑटोमेटिक कैमरा में निकल रहा है। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाया तो हुआ ही पड़ा है। दिल्ली वालों को तो सभी को निमंत्रण देकर बुलाना है। हलचल की धरनी पर तो राज नहीं करना है, स्वर्ग धरनी पर राज करना है, तो बनना पड़ेगा ना। अभी फास्ट गति करो, अभी भी यह नहीं सोचो कि सुनने वाले नहीं मिलते हैं। सुनने वाले तो बहुत है। बाबा से कहते हैं बाबा कोई मिलता नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं उसके लिए? साकार मूल्यों में जंगल में अगर शिकारी कहे कि शिकार नहीं है तो कौन मानेगा? थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति कैसी बना लो। अच्छा लड़ो लेकर नहीं, सेवा के लिए,
निमित्त
सेवा के लिए, जिससे सेवा बढ़ जाए।
बेहद,
बेहद की स्थिति, निमित्त स्थिति, जिससे सेवा बढ़ जाए।
दृष्टिवृत्ति बेहद,
दृष्टिवृत्ति बेहद
की। और दीवार को ज्ञान सुनाए, दीवार को ज्ञान सुनाए।
अच्छा
उदाहरण मुहूर्त,
उदाहरण मुहूर्त नहीं, स्थिति कैसी बना दो कि जिससे सेवाएं बढ़ जाए।
लाइट हाउस,
लाइट हाउस,
डबल लाइट,
माइट हाउस। स्थिति कैसी बना दो,
सेवा जाए।
अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ, चुंबक की तरह आकर्षण में, खींचने वाली, सुंदर, आकर्षित, आकृष्ट करने वाली, मनोहर, मनहर। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है, चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्मा को नहीं खींच सकती? ऐसे कितने कार्य जो स्थूल व्यक्ति वस्तु कर सकते और हम नहीं कर सकते, इसकी एक लिस्ट निकालनी चाहिए। बहुत बार बाबा कहते हैं वो कर सकते हो तुम नहीं कर सकते। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, स्पिरिचुअल मैग्नेट। चुंबक को कहना नहीं पड़ता सुई आओ, चुंबक को कहना पड़ता है सुई आओ, स्वतः ही खींचती है। रूहानी आकर्षण में स्थिति स्वयं आकर्षित करती है। रूहानी, स्पिरिचुअल, अलौकिक आकर्षण में, आकर्षण करने वाली, खींचने वाली, कशिश करने वाली, आकर्षित करने वाली, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है ना। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म क्या है? सेवा। और तो सब निमित्त मात्र है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है। सेवाधारी होना, अचल बनो और अचल बनाओ, सदा संतुष्ट। प्रोग्राम करो, यह बहुत अच्छा। प्रोग्राम अर्थात
प्रोग्रेस।
तो बाबा ने यहाँ पर क्या क्या कहा? सबसे पहले तो दिल तख्त हृदय सिंहासन पर विराजमान आत्माएं हैं हम। इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली, हमसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। सुबह उठते हो तो स्वयं भगवान तुमसे स्पेशल मिलने आता है। अमृत वेले पहली मुलाकात सर्व खजानों के मालिक के साथ। पढ़ाई करते हो तो स्पेशल तुमको पढ़ाने आता है, परम धाम से पढ़ाने आता है। इंग्लैंड लंदन से पढ़ाने नहीं आता है, परम धाम से पढ़ाने आता है। कर्म करते हो तो सदा तुम्हारे साथ है, फ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ है। सैर करते हो तो तीनों लोकों की सैर, कितने मनोरंजन के साधन बाप ने तुमको दिए, तीनों लोकों की सैर। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों की सैर करो। देखना चाहते हो तो किसको देखो? स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, बाप के और स्वयं के अलौकिक कहानी के ड्रामा को देखो। अगर देखना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री पढ़ो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 साल का ड्रामा देखो। श्रृंगार करना चाहते हो तो एक एक गुण के विस्तार का श्रृंगार स्वयं में करो। एक एक गुण के विस्तार को स्वयं में समाना, यह है श्रृंगार। रूरियान करना हो तो रूह के रचता से रूरियान करो। रूह बनकर रूह के रचता से रूरियान। तो देखना, श्रृंगार करना, रूरियान करना, सैर करना, डांस करना, खाना बनाते हो तो स्मृति में रखो कि किसके लिए भोजन बनाते हो, किसको खिलाते हो। भोजन अगर बनाते हो तब, खाते हो तो तुम्हें संग खाओ, सोते हो तो बाप से लेन देन, समाचार का लेन देन, और उसके बाद रात में दूसरे दिन के लिए कर्म और संकल्प की प्रेरणा लो। आज का लेन देन जो कुछ हुआ, और दूसरे दिन के लिए संकल्प और कर्म की प्रेरणा, जैसे हल्के होकर सो जाओ, जैसे रात में हल्की ड्रेस पहन के सोते हो वैसे सो जाओ। तो यह है आज की मुरली, सुबह से लेकर तो रात तक। सुबह अमृत वेला, उससे मिलन, फिर पढ़ाने आना, फिर कर्म योग, फिर शेयर करना, फिर देखना, फिर हिस्ट्री देखना, हिस्ट्री पढ़ना, फिर ड्रामा को देखना, फिर रूरियान करना, फिर भोजन बनाना, फिर सोना,
फिर जागना,
ये सब कुछ सुबह से लेके तो रात तक। खुशी जैसा, तुम जैसा, जो खुशी का खजाना, सर्व खजाने तुमको प्राप्त है बाप से, जो कि और किसी को प्राप्त नहीं है इस संसार में। तो इतने सारे खजाने हैं, सबसे विशेष खजाना है खुशी, बाबा ने कहा। अगर इतने मनोरंजन के साधन प्राप्त है तो और नहीं बुद्धि जाती जा सकती है, फिर भी जाती है। तो सदा अपने को बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा समझो। मनोरंजन, मन का रंजन करने वाले साधन, मन का एंटरटेनमेंट करने वाले, पास टाइम, रिक्रिएशन, भक्ति में कहते हैं विश्व रंजन आत्मा हो, विश्व का रंजन करने वाली आत्मा। ये मनोरंजन के साधन, बाप ने तुम्हें इतने सारे मनोरंजन के साधन दिए हैं, इतनी खुशी का खजाना, फिर भी उदास, आज पूछा है प्रश्न बाबा ने, फिर बोले ना मंच में। तो अपने को सदा दिल दिलाराम बाप के दिल में रहने वाले अनुभव करते हो कि हम दिलाराम के दिल में बैठे हैं, सदा सेफ, कोई हलचल नहीं, चढ़ना ऊपर उतरना नहीं, माया के तूफान, प्रकृति के तूफान, वायुमंडल की हलचल, सबसे सेफ। कल का वरदान भी था ना, तो यादगार है अचल घर, चंचल घर नहीं, अचल घर हमारा यादगार। हलचल में नुकसान और अचल में फायदा, ज्यादा हिलते रहे तो टूट फूट जाएंगे, तो यहां हमें अचल। तो सदा यह याद रखो, यह स्मृति रहो, यह स्मृति का तिलक स्वयं को दे दो। ये तिलक कभी मिट नहीं सकता, अविनाशी तिलक है, वो तिलक तो फिर भी मिट जाता है। ये तख्त भी अविनाशी है, वो कुर्सी है, ये तख्त है, वो कुर्सी में अस्थिरता है, ये तख्त में अस्थिरता नहीं है, ये सदा का है, वो अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। उसके लिए झगड़े है, मारामारी है, यहाँ तो कितना भी बैठ सकते हैं। तो बाबा ने फिर दिल्ली वालों को सेवा के लिए कहा, कितने तैयार किए, चैरिटी बिगिन सेट होम, वो सब बातें कही, और लास्ट में कहा कि रूहानी आकर्षण में स्थिति, रूहानी आकर्षण में स्थिति बनाओ। वो चुंबक कभी कहता नहीं है कि सुई आओ, उसको बुलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही खींच के आ जाती। तो अपनी स्थिति को रूहानी आकर्षण में, सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करता है आत्माओं को, जिसकी स्थिति, कौन सी स्थिति में स्थित रहो और ज्ञान सुनाओ तो आत्मा खींच कर आएगी। तीर कब लगेगा? आत्मिक स्थिति, अशरीरी अवस्था, अशरीरी अवस्था में स्थित होकर मुरली पढ़ो, पढ़ाओ, ज्ञान सुनाओ तो आत्माओं को तीर लगेगा, आकर्षण होगा। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती है? दृष्टि दो और अशरीरी बना दो, इतनी शक्तिशाली दृष्टि को देख। तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, चुंबक को कहना नहीं पड़ता सुई आओ, स्वतः ही खींचती है। रूहानी आकर्षण में स्थिति स्वतः आकर्षित करती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ रहा है अर्थात अभी वो स्थिति बनाई नहीं है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है, सेवा ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है, श्वास श्रेष्ठ कर्म है, प्राण है, और तो सब निमित्त मात्र है, जो कुछ है वो सब निमित्त मात्र है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है। सेवाधारी होना, अचल बनो और अचल बनाओ। कौन बना सकता है अचल? जो स्वयं हिल रहा है वो दूसरों को अचल नहीं बना सकता, जो स्वयं शक्तिशाली नहीं है वो दूसरों को शक्तिशाली नहीं बना सकता। तो स्वयं में शक्ति भरना है। आज भी बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी पहले स्वयं प्रति बनो, तो विश्व प्रति स्वतः ही बन जाओ। स्वयं प्रति कल्याणकारी, कोई भी अकल्याण का कर्तव्य नहीं करना है। पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2, कोई भी अकल्याण का कर्तव्य, इसकी लिस्ट निकालना। आज कौन कौन से अकल्याण के कर्तव्य करते हैं ब्राह्मण? अकल्याण के कर्तव्यों की लिस्ट। विकार की बात नहीं खाली, काम करो लोग मो नहीं, अकल्याण के कर्तव्य कौन से हो सकते
हैं?
नहीं, थोड़े कर्म,
कर्म
मनसा नहीं, कर्म कर्म,
फैमिलियरिटी,
हाँ फैमिलियरिटी और झगड़ा, इसमें स्थूल सारी चीजें आएंगी। अकल्याण के कर्तव्य, जिससे बाप की ग्लानी हो, यज्ञ का नाम बदनाम हो, वो सब है अकल्याण के कर्तव्य। बाबा ने आज के मुरली में कहा है कोई भी अकल्याण के कर्तव्य ना हो।
कमजोरियां,
पर चिंतन, पर चिंतन का चर्चा, दूसरों की सेवाओं के साथ साथ सेवाधारियों की कमियों का चिंतन करना, सेवा समाचार देते समय सेवाधारियों के कमजोरियों का भी वर्णन करना,
दोष दृष्टि,
इसका चिंतन, इसका मनन, उसका विस्तार, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। ये सब है अकल्याण के कर्तव्य। हमारा श्रेष्ठ कर्म सेवा है, ये अकल्याण के कर्तव्य नहीं। और क्या हो सकता है अकल्याण के कर्तव्य? बड़ों को दिखाने के लिए आगे आगे करना, दिखावा, आडंबर, शो, ढोंग, या ऐसे समझना मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं उनमें एक दोष आ जाता है धीरे धीरे, बहुत श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ये समझने लगते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे उनके प्रति उनका थोड़ा सम्मान थोड़ा कम हो जाता है। सोचते ये तो कुछ नहीं करते हैं, उनके प्रति एक सूक्ष्म घृणा उनके हृदय में प्रवेश कर जाती है जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, और उनके साथ ही दूसरा कमरे में रहने वाला व्यक्ति कोई पुरुषार्थ नहीं करता, तो उसके प्रति दृष्टि कैसे हो जाती है? थोड़ी सी सम्मान थोड़ा कम हो जाता है, होता है ना कि हम इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ये तो कुछ नहीं करता।
क्या बोलना पड़ेगा? बहुत अच्छा कर रहे
बोलना कुछ नहीं है, शुभ भावना रखनी है उसके प्रति, चर्चा नहीं करनी है, वर्णन नहीं कर रहे।
आप सूर्य और सूते रहे
हरेक का समय अपना अपना है, पुरुषार्थ का जो समय है करने का अपना अपना है, किसी उसका भी समय आया नहीं है, करेगा वो भी एक दिन। शुभ भावना रखो कि बीज तो पल्लवित होगा एक दिन, इसके लिए जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा शक्तिशाली अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली रेगुलर सुन रहे हैं, मुरली पर चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सारे दिन पर ट्रैफिक कंट्रोल में ध्यान है, सारे दिन पर स्वयं की स्थिति पर ध्यान है, व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर रहे, अशरीरी अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे, रूहानी ड्रिल का अभ्यास कर रहे, बाप दादा के महावाक्यों का नित्य अध्ययन कर रहे, पर जब उन आत्माओं को देखते जो ये सब नहीं कर रही है या थोड़ा कम कर रही है या थोड़े व्यर्थ में जा रहे हैं,
परदर्शन ही वो
सूक्ष्म परदर्शन,
वो भी हमारी खुद की कमी है,
वो भी हमारी कमी है,
हमारी कमी।
बाबा देखो, बाबा के सामने कैसी कैसी आत्माएं आ जाती है, वो प्रेम का सागर है, परम धाम में बैठकर उससे प्रेम की किरणें, जैसे उसका बिहेवियर है वैसे हमारा है, उसके सामने ऐसी बहुत सारी आत्माएं आ जाती है, ऐसे इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं जो आत्माएं पूछती है बाबा को, जिसके उत्तर उसने वो दे चुका है। ज्ञान की दृष्टि से उसे अज्ञानी कहा जाएगा, पर वो भी आत्माएं पूछती है उसे, पर वो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, कभी ये कहता है जाओ जाकर 70 की मुरली में पढ़ो, मैंने इसका उत्तर दे दिया है। जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो ये कर्म की गुह्य गति के ज्ञान, सारा ज्ञान मैं दे चुका हूं, फिर भी आत्माएं पूछती है। और बाबा क्रोधित नहीं होता है, बाबा गुस्सा नहीं करता है। ऐसी आत्माएं आती है जो दिखावे के लिए भी आती है बाबा के सामने, पर बाबा कभी उनको कहता है कुछ?
राम दिया
कुछ नहीं, धैर्य उसमें, प्रेम उसमें, अपार सागर है वो, सिंधु है।
गुस्सा करना नहीं आता तो करेगा नहीं।
तो जैसे वो है वैसे हम, इतनी गुह्य बातें उसने बता दी है, गुह्य और गुह्यतम, ऐसी ऐसी रहस्यमय रहस्यपूर्ण गूढ़ बातें उसने बता दी है, मिस्टीरियस सीक्रेट क्लैंडेस्टिन, फिर भी वो कभी इस तरह से बिहेव नहीं करता है। उसका व्यवहार देखो कैसा है, प्रेम स्वरूप, कभी घृणा की दृष्टि नहीं है किसी के प्रति उसके मन में। इसको क्या बताऊं, इसको बताया तो भी सुधरने वाला थोड़ी है, क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करूं इसके साथ, ऐसे सोचता है। तो उसके जैसा तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं,
बोले गुस्सा नहीं आता है, कभी कभी बोलता है मैं मारपीट के सजा देकर भी ले जाऊंगा।
वो साकार की बातें है सर, साकार में तो बहुत कुछ बोला है उसने, पर उसके बोलने का टोन क्या था वो महत्व करना, महत्व का, वो गुस्से से नहीं बोल रहे, वो भी टोन क्या है,
महाकाल हूँ
वो जो भी बोलता है, पर उसका टोन जो है वो प्रेम स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं सदा संतुष्ट प्रोग्राम करो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अर्थात
प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस। ओम शांति।